हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अनामिका गुस्से से भड़कते हुए बोली थी, झलक आज तुम जिसका भी असली चेहरा तुम देखना चाहती हो तो उसे भी सामने लेकर आओ। मुझे पूरा यकीन है आज तुम्हें सबके असली चेहरे नजर आ जाएंगे। अनामिका की बात सुनकर झलक ने नम आंखों से उसकी ओर देखा, तभी अचानक आकांक्षा उसके सामने आ खड़ी हुई। आकांक्षा को देखकर झलक के कानों में उसकी कही हुई बातें गूंजने लगी कि वो उसे पूरी तरह बर्बाद कर देगी, और सच में आकांक्षा ने बड़े ही चालाक तरीके से अपनी चाल चली थी और वो उसमें कामयाब भी हो चुकी थी। आकांक्षा को यूं हंसते हुए देखकर अनामिका के तन बदन में आग लग गई। वो उसकी ओर देखते हुए गुस्से में बोली, कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह झलक पर हंसने की? जाओ यहां से। तभी आकांक्षा ने ठंडी मुस्कान के साथ अनामिका की ओर देखा और बोली, मैं कौन हूं या कौन नहीं इस बारे में सोचने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल मैं अपनी प्यारी बहन से अकेले में बात करना चाहती हूं। मेरी प्यारी बहन, सॉरी, नाजायज बहन से। आकांक्षा के ये शब्द सुनते ही झलक के अंदर जैसे आग सी लग गई, लेकिन उसका शरीर मानो उसका साथ नहीं दे रहा था। अगर वो थोड़ी सी भी मजबूत हालत में होती तो शायद अब तक खड़ी होकर आकांक्षा का मुंह तोड़ चुकी होती, मगर आज उसे अजीब सा लग रहा था, जैसे सारी ताकत उसे छिन चुकी थी। अगर वो थोड़ी सी भी मजबूत हालत में होती तो शायद अब तक खड़ी होकर आकांक्षा का मुंह तोड़ चुकी होती, मगर आज उसे अजीब सा लग रहा था, जैसे सारी ताकत उसे छिन चुकी थी। और सबसे बड़ा दुख झलक को इस बात का लग रहा था कि उसे एक रेप विक्टिम की निशानी कहा जा रहा था। नैना ओबेरॉय के साथ रेप हुआ था, लेकिन इनफैक्ट झलक को नैना ओबेरॉय के साथ एक बिल्कुल अलग ही तरह की अनुभूति और दर्द महसूस हो रहा था। वो खुद को उस घटना से कहीं ज्यादा टूटा हुआ महसूस कर रही थी। फिलहाल आकांक्षा को वहां देखकर झलक ने अनामिका से धीमी आवाज में कहा, अनामिका, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। अनामिका जाना तो बिल्कुल नहीं चाहती थी, लेकिन उस वक्त झलक की हालत देखकर वो मजबूरी में कुछ देर के लिए बाहर चली गई। जैसे ही अनामिका बाहर गई, आकांक्षा मुस्कुराते हुए आगे आई और झलक को जबरदस्ती गले लगाकर बोली, मेरी प्यारी बहन, ये क्या हालत हो गई है तुम्हारी? मुझे माफ कर देना, मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारी ऐसी हालत हो जाएगी। और ये क्या, तुम तो सिर्फ बेहोश हुई थी, मुझे तो लगा था कि तुमने खुद को आग लगा ली होगी या फंदे से लटक गई होगी, लेकिन तुम तो यहां अस्पताल के शानदार बेड पर आराम कर रही हो। कभी सोचा है इस अस्पताल का बिल कौन भरेगा? फिर वो जहर भरी मुस्कान के साथ बोली, और अब एक बात बताओ, जैसे ही तुम्हारे नाजायज होने की बात तुम्हारे पालने वाले माँ बाप को पता चलेगी, वो भी तुमसे मुंह मोड़ लेंगे। तुम तो जानती हो ना, इस समाज में नाजायज लोगों की कोई जगह नहीं होती। मैंने तुझे कहा था ना कि मैं तुझे जीने लायक भी नहीं छोड़ूंगी, देखा मैंने क्या किया। आकांक्षा ने अपना चेहरा और सख्त करते हुए कहा, अब मेरी प्यारी बहन, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारे पास अब सिर्फ और सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो तुम किसी कोठे पर चली जाओ, हर रात अपने जिस्म को बेचो और अपना पेट पालो, या फिर सीधा फांसी से लटक जाओ, क्योंकि अगर तुम आज मर भी जाती हो ना तो इस समाज को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। उल्टा लोग यही कहेंगे, नाजायज थी, कूड़ा कचरा थी, मरने में देर हो गई। वो एक पल रुकी और फिर बोली, अगर तुम खुद फांसी लगा लोगी तो मेरे ख्याल से मामला आसान हो जाएगा, लेकिन अगर तुम्हें अपनी जिंदगी थोड़ी रंगीन करनी है तो कोठे पर बैठ जाओ। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए कोठे का नंबर भी लेकर आई हूँ, वहां एक फेमस लेडीज बैठती है, वही तुम्हारी मदद करेगी, वही तुम्हें वहां तक पहुंचाएगी। मैं वादा करती हूँ वहां ज्यादातर अमीर लोग ही आएंगे। हाँ, कभी कभी तुम्हें कुछ बूढ़ों के साथ भी रात गुजारनी पड़ सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, बूढ़े अक्सर ज्यादा पैसे देकर जाते हैं। आकांक्षा की ये बातें सुनकर झलक बिल्कुल पत्थर की तरह जड़ हो चुकी थी। ना उसके अंदर आकांक्षा से बहस करने का जज्बा बचा था, ना ही जवाब देने की हिम्मत। वो बस खाली नजरों से सामने देख रही थी। आकांक्षा संतुष्ट मुस्कान के साथ वहां से चली गई। वहीं बाहर अनामिका बेचैनी से खड़ी थी। उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो चुकी थी। वो झलक के साथ इस तरह की गलत हरकत होते हुए नहीं देख सकती थी। ऊपर से रिश्तों का ये दोगलापन, लोगों की नकली इज्जत, सब कुछ उसे अंदर तक अजीब और डरावना लग रहा था। फिलहाल अब झलक पूरी तरह टूट चुकी थी। सिद्धार्थ का उसके मुंह पर तलाक के कागज और 1 करोड़ का चेक फेंकना, आर्यन की मजबूरी भरी बातें, रणविजय का पीछे हट जाना, दादी के कड़वे शब्द और ऊपर से नैना ओबेरॉय से जुड़ी बातें कि वो मनहूस है, बाप की निशानी है, और अब आकांक्षा के ये शब्द कि उसके पास या तो मरने का रास्ता है या खुद को बेचने का। ये सब सोचते ही झलक ने अचानक अपने कानों पर हाथ रख लिए और जोर से चीख मार दी। उसी पल उसने फैसला कर लिया, वो अब नहीं जिएगी, वो मर जाएगी। वो अब जिंदा नहीं रहना चाहती थी। एक शेरदिल लड़की को सब लोगों ने मिलकर चारों तरफ से तोड़ दिया था। अब उसमें किसी का सामना करने की ताकत नहीं बची थी। अचानक झलक पागलों की तरह कमरे से बाहर भागी। वो लगातार दौड़ती रही क्योंकि वो इस वक्त अस्पताल की ऊपरी मंजिल पर थी। उसने तय कर लिया था कि वो इसी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे देगी। जैसे ही अनामिका ने कॉरिडोर में झलक को भागते हुए देखा, वो तुरंत उसके पीछे दौड़ी। झलक, रुक जाओ, झलक कहाँ जा रही हो, झलक! लेकिन झलक नहीं रुकी। उसने सामने की खिड़की खोल दी। जैसे ही वो छलांग लगाने वाली थी, अचानक किसी ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया। झलक आधी नीचे लटक चुकी थी और लगातार चिल्ला रही थी, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मैं नहीं जीना चाहती, मैं नहीं जीना चाहती। तभी उसे पकड़े हुए आदमी ने जोर से चिल्ला कर कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, तुम मेरी बेटी है, मैं हूं तेरा बाप। वो कोई और नहीं, आरव मल्होत्रा था। उसी वक्त अनामिका दौड़ती हुई वहां पहुंची। उसने देखा कि झलक गिरने ही वाली है और एक आदमी उसे पकड़कर पूरी ताकत से ऊपर खींच रहा है और बार बार कह रहा है, मैं तेरा बाप हूं। ये सुनकर अनामिका की आंखें हैरानी से फट गईं। जैसे ही वो थोड़ा और आगे बढ़ी और उस आदमी का चेहरा साफ देखा, तो उसे ऐसा लगा मानो किसी ने उसे गहरी खाई में धक्का दे दिया हो। लेकिन वो आदमी अनामिका की ओर देखते हुए चिल्लाया, क्या देख रही हो, मेरी मदद करो, मेरी बेटी को बचाओ, मेरी बेटी की जान नहीं जानी चाहिए, ये मेरी बेटी है। ये सब सुनकर अनामिका पूरी तरह से फ्रीज हो चुकी। लेकिन फिलहाल आगे बढ़कर बुजुर्ग आदमी ने झलक को ऊपर खींच लिया। झलक के पैर अब जमीन पर नहीं टिक रहे थे और वो लगातार ऊपर की ओर खींची जा रही थी। झलक अब उस आदमी का चेहरा लगातार देख रही थी जो बार बार कह रहा था कि वो उसका बाप है। लगातार उसका चेहरा देखते देखते झलक की आंखें भर आईं और वो अचानक गिरकर बेहोश हो गई। ठीक उसी वक्त वही बुजुर्ग आदमी जो पहले मंदिर में झलक से मिल चुके थे वहां मौजूद थे। उन्होंने थोड़ी तेज आवाज में चिल्ला कर कहा, अनामिका तुम यहां क्या कर रही हो? आवाज सुनते ही आरव मल्होत्रा पीछे मुड़कर देख रहा था, लेकिन उसकी नजर ऊपर नीचे झलक और अनामिका पर थी। बुजुर्ग आदमी लगातार झलक और आरव दोनों की ओर देख रहे थे और उन्होंने तेजी से आगे बढ़कर आरव के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा। ये सुनते ही आरव का सब्र टूट गया और वो फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आंसू भरी आवाज अनामिका के कानों में गूंज रही थी, ये मेरी बेटी है, मेरी बेटी। ये शब्दों को सुनकर अनामिका का सिर भी चकरा गया। वो समझ गई कि झलक के लिए अब सबसे बड़ी सुरक्षा और प्यार यही आदमी दे सकता है। दोस्तों, इसी के साथ झलक का रोना, दुख और टूटना अब पूरी तरह से खत्म होता है। आज के बाद आप झलक को पहले जैसी कमजोर या डरपोक नहीं पाएंगे। अब झलक एक बिंदास, दबंग और ताकतवर लड़की बन चुकी है, साथ ही सबसे अमीर और पावरफुल भी।
आप देखेंगे कि अब उसकी कहानी पूरी तरह बदल चुकी है और ये झलक अपने जीवन में नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही है। क्या होगा झलक की जिंदगी में आगे, जानने के लिए बने हो रहिए दोस्तों, और मजा लीजिए अब कहानी की शानदार शुरुआत का। और जैसे मूवीज में इंटरवल होता है, आज इस स्टोरी का इंटरवल हुआ है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा।